اس نے بنی نو انسان کو اسی لیے پیدا کیا کہ ہم اس کی پرستش کریں، اور وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک گھٹنا اس کے حضور جھکے، اس کے نام کی حمد اور ستائش کرے۔ اس سے پہلے کہ ہم رب خداوند بادشاہ کی ستائش کریں، اس کے کلام اقدس کو سیکھنا شروع کریں، خداوند کے حضور جھکیں گے اور اپنے اپنے دلوں کی حالت کا جائزہ لیں گے اور اپنے سارے بوجھ کو اسے دیں گے، ہر طرح کی فکر کو، ہر طرح کے خوف کو اس کے سپرد کریں گے، کیونکہ ہم اپنی قوت سے، اپنی حکمت اور دنائی سے اس کی سچائیوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور جیسے کہ کلام خدا کہتا ہے کہ وہ پاک ہے، تم بھی پاک بنو۔ جب جب ہمیں تاریکی پائی جاتی ہے، تاریکی ہمیں خدا سے جدا کرتی ہے اور ہمارا روحانی تعلق اس سے ٹوٹتا ہے۔ اس لیے ہر روز ایمانداروں کو ضرورت ہے کہ اس مقدس صادق القول زندہ آسمانی کے باپ کے حضوری میں آتے وقت اپنے اپنے دلوں کی حالت کا جائزہ لیں۔ سوائے ہم خداوند کے حضور جھکیں۔ قادر مطلق خدا، تو ہمارے لبوں کا، ہمارے دلوں کا، ہماری سوچوں کا، ہمارے خیالوں کا، ہماری ایک ایک سانس کا رکھوالا ہے۔ جب جب ہم تجھ سے دور ہوتے ہیں، خداوند تیرا پاک روح جو تُنہیں ہمیں بخشا ہے، وہ ہمیں آگاہ کرتا ہے۔ تیرا کلام ہمیں تربیت اور نصیحت دیتا ہے تاکہ صحیح راستے پر چلیں اور اس زمین پر، اس عارضی دنیا میں جو تاریکی، جو گہری تاریکی ہے، اس تاریکی میں تیرے نور کو ظاہر کرنے کا باعث ٹھہریں۔ اور اسی لیے تو چاہتا ہے کہ اے سونے والوں جاگو اور مردوں میں سے جی اٹھو، تاکہ ہماری زندگیوں میں تیرا نور اور ہماری زندگیوں کے وسیلہ سے تیرا نور دوروں تک پہنچے۔ سو آج کے کلام کے حصہ کو لے اور ہم سب کو بڑی برکت دے، اور آج جو کچھ سیکھیں ہم سب کی تربیت اور نصیحت کے لیے ہو، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ میرے ساتھ نکالیں نئے عہد نامہ میں سے افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا دو باب، اس کی 22 آیت، اور یوں لکھا ہے: اور تم بھی اس میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو۔ ہر ایک ایماندار اس میں باہم اسی لیے تعمیر کیا جاتا ہے تاکہ وہ اس بات کو پہچانے کہ وہ روح میں خدا کا مسکن، یعنی خدا کی سکونت گاہ، خدا کے رہنے کی جگہ ہے۔ اور ہم جیسا کہ کلام خدا میں سے سیکھ رہے ہیں، روح القدس کی اس خدمت اور روح القدس کی وہ نعمتیں جو روح القدس ایمانداروں کو ایمان لاتے وقت دیتا ہے، اس کی ہم نے دو فرشتوں کو دیکھا۔ ایک وہ فرشتہ ہے جس میں مستقل اور وہ نعمتیں ہیں جو ابھی اس موجودہ دور میں کلیسیا میں کام میں لائی جاتی ہیں، کام مسیح کے بدن کے ترقی کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، جو مستقل نعمتیں ہیں، جس میں پاسٹر کی خدمت ہے جسے پاسبانی خدمت کہا گیا ہے، اور مبشر کی خدمت ہے، اس کے بعد پھر انتظامیہ کی ہے، نصیحت کرنے والے کی ہے، حوصلہ، ایک کافی نعمتیں ہیں جو مستقل ہیں۔ جو عارضی نعمتیں ہیں ان میں رسالت، یعنی کہ رسول کی نعمت، اب نہیں، موجودہ دور میں کوئی رسول کی خدمت نہیں ہے، نہ ہی نبی کی ہے، نہ ہی غیر زبانیں بولنے کی نعمت موجود ہے، یہ نہ ہی معجزات کی قدرت اور طاقت آدمیوں کو دی جاتی ہے، جیسے کہ کلام خدا کے وقت کے مطابق رسول جس چیز کے لیے مردوں کو، اندھوں کو، لنگڑوں بہروں کو زندہ کرتے تھے، یہ وہ طاقت ان کو دی گئی اس وقت کے لیے۔ لیکن اس کے بعد خداوند نے اس برکات کو ختم کر دیا، لیکن جو اب مستقل برکات ہیں، جو نعمتیں ہیں ایمانداروں کو دی گئی، اس میں پاسٹر کی خدمت ہے تاکہ مسیح کا بدن ترقی پائے، مبشر کی خدمت ہے تاکہ بہت سے لوگ مسیح یسوع کو پہچانے، اور انتظامیہ کی ہے اور مددگار کی ہے، اور بہت سی نعمتیں ہم اس پر سیکھیں گے۔ ہم پچھلے دنوں سے سیکھ رہے ہیں پاسبان کی خدمت پر، اس کا ہم نے تعارف سیکھا، اور تعارف میں ہمیں سیکھا کہ پاسبان کو ضرورت ہے کہ اپنے سارے دل سے और पूरे बोझ के साथ खुदावंद खुदा से मोहब्बत रखते हुए भेड़ों की गल्लाबानी करें। भेड़ों से मुराद ईमानदार। आज हम फिर इसी टॉपिक पर सीखेंगे और हमारा जो बुनियादी हवाला है वो इफ़सियों 2 बाप उसकी 22वीं आयत है। इसी में से हमने जो मजमून शुरू किया था रूहुल कुद्दस के बारे में तालीम, और हम सीख रहे हैं पासबानी खिदमत के बारे में। पासबान की खिदमत बहुत ही उम्दा और बड़ी खिदमत है। ये मौजूदा कलीसिया में सबसे बड़ी और इख्तियार वाली खिदमत है जो खुदा ने ईमानदारों को दी है। और ये खिदमत जब कोई भी ईमान में शामिल होता है, यीशु मसीह पर ईमान लाता है, तो रूहुल कुद्दस कोई ना कोई हर एक ईमानदार को नेहमत देता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया भाई जुल्फकार, उनके बकौल रूहुल कुद्दस ने उनके दिल में जो तसल्ली हौसला डाला है वो है उनकी खिदमत। उन्होंने बताया मुझे मुबशिर की खिदमत, मुझ पर खुदा रूहुल कुद्दस ने जाहिर किया है पासबानी खिदमत को, पास्टर टीचर की खिदमत को। बेशक अभी मैं पास्टर नहीं हूं, लेकिन ये मेरा गोल है, ये मेरा मकसद है कि मुस्तकबिल में खुदावंद की पाक मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी में मुसलसल तौर पर अपनी नेहमत के मुताबिक उस मंसूबे को जो खुदावंद खुदा ने रखा है पूरा करूं। पासबान को जरूर है कि वो यूनानी उबरानी जुबान से वाकफ हो ताकि सही तरीके से कलाम खुदा की क्या करने वाला बने, तफसीर करने वाला बने। मुझे यहां पर बहुत सी चीजें सीखना जरूर है। जैसे स्कूल में मुझे अपना स्कूल की डिग्री हासिल करनी है, फिर उसके बाद कॉलेज में जाना है। ये तमाम जरूरियात है जो पास्टर की खिदमत में जरूरी है, ताकि वो खुदा की तरफ से कलीसिया को सिखाए कि खुदावंद क्या अपने कलाम में कहता है। सो आज हम देखेंगे पासबान की खिदमत में के पासबान की खिदमत में जरूर है कि ईमानदार जो पासबान है उसे मोहब्बत रखने की जरूरत है। और हमने इसके लिए हवाला देखा था यूहन्ना की इंजील उसका 21वां बाप। आज फिर इस हवाला को देखेंगे और इसमें से चंद एक सच्चाइयों को सीखेंगे, और उम्मीद है कि रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में ये सब हमारे लिए तरक्की का बायस ठहरेंगी। मेरे साथ निकालें यूहन्ना की इंजील उसका 21वां बाप, उसकी 15वीं आयत से हम 17वीं आयत तक पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, और जब खाना खा चुके तो यीशु शमौन पत्रस से कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने उससे कहा, हां खुदावन, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। उसने उससे कहा, तो मेरे बर्रे चरा। उसने दोबारा उससे कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा, हां खुदावंद, तू तो जानता ही है मैं तुझको अजीज रखता हूं। उसने उससे कहा, तो मेरी भेड़ों की गलाबानी कर। उसने तीसरी बार यानी कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज रखता है? क्योंकि उसने तीसरी बार उससे कहा, क्या तू मुझे अजीज रखता है, इस सबब से शमौन दिलगीर होकर उससे कहा, शमौन ने दिलगीर होकर उससे कहा, ऐ खुदावंद, तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, तो मेरी भेड़ें चरा। इस 3 आयात में हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह और शमौन के दरमियान बातचीत हो रही है। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, तोमा ने यकीन नहीं किया, तोमा पर खुदा ने यीशु मसीह ने अपने आप को जाहिर किया, और उसके बाद पतरस और बाकी शगिर्द झील पर बैठे हैं और वो खाना खा रहे हैं, और उनको यीशु मसीह उनके पास आता है और उन्हें मछली मुहैया करता है। सो उसके बाद یسوع مسیح صرف اور صرف شمعون سے مخاطب ہوتا ہے کہ کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے. یونانی زبان میں جب ہم دیکھتے ہیں محبت کا لفظ, تو یہاں پر جو یسوع مسیح نے کہا شمعون کیا تو مجھ سے اگاپے رکھتا ہے, شمعون نے جواب میں کہا ہاں خداوند تو جانتا ہی ہے میں تجھ سے فلیٹو رکھتا ہوں. اگاپے یعنی کہ وہ محبت جو خدا نے دنیا سے کی, جس میں تمام محبت جو کہ پیشتر سے خدا ہر ایک انسان سے کرتا ہے. یسوع مسیح کا سوال تھا کہ کیا تو مجھ سے صرف اس حد تک محبت رکھتا ہے کہ تیرے لیے کچھ کروں, یا تو ان سب سے زیادہ محبت رکھتا ہے؟ شمعون نے کہا ہاں میں ان سب سے زیادہ تجھ سے محبت نہیں, بلکہ جو لفظ استعمال کیا ہے تجھے عزیز رکھتا ہوں, شخصی طور پر تجھ سے محبت کرتا ہوں, شخصی طور پر تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے اور تو نے کیا کیا کام کیے ہیں. تو ان تین باتوں میں پترس یسوع مسیح سے کہتا ہے کہ میں تجھ سے شخصی محبت یعنی کہ فلیٹو شخصی محبت رکھتا ہوں. جب ہم دنیا کے نقطہ نظر سے محبت کے لفظ کو دیکھتے ہیں تو دنیا صرف محبت کا لفظ استعمال کرتی ہے, جسے گرامر کے حساب سے جب دیکھتے ہیں تو اسے ناؤن کہا گیا ہے. ناؤن کا مطلب یعنی کہ اسم, وہ لفظ, اسے اردو میں اسم کہتے ہیں, یعنی کہ وہ لفظ جو کسی جگہ, شے یا حالت یا کسی نام کے لیے استعمال کیا جائے. دنیا کا لو یا محبت جو ہے وہ صرف اور صرف ظاہرانہ طور پر ہے, جو صرف استعمال کی جاتی ہے, لیکن بائبل مقدس ہمیں ایسا درس نہیں دیتی. بائبل مقدس میں جب ہم یونانی زبان کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس جس بات کا حکم دیتی ہے وہ ناؤن نہیں ہے, وہ ورب ہے. یعنی کہ ورب کا مطلب ہے جملے کا وہ رکن جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا یا پھر کام کرنے والا, یعنی کہ ورب یعنی کہ کام, عملی طور پر عملی جامہ پہنانا. یہ بائبل مقدس ہمیں درس دیتی ہے کہ محبت کو صرف جاننا ہی نہیں بلکہ محبت کرنی بھی ہے, نہ کہ محبت سے صرف واقف ہونا کہ فلاں کی محبت جیسے ماں کی محبت, باپ کی محبت, بیٹے کی محبت, بیوی کی خاوند کے ساتھ محبت, لوگ جب بات کرتے ہیں کہ ان کی محبت, لیکن بائبل مقدس کہتی ہے کہ تمہاری محبت کیسی ہونی چاہیے. ایمانداروں کو صرف محبت کو جاننا ہی نہیں ہے بلکہ محبت کرنی ہے, اور اس کے لیے بائبل مقدس ہمیں بڑے واضح طور پر, جب ہم پرانے عہد نامہ کو دیکھتے ہیں تو بہت سے حوالہ جات ہیں, لیکن آپ کے ساتھ چند ایک حوالہ جات شیئر کروں گا. میرے ساتھ نکالے خروج اس کا 19 باپ اس کی 18 آیت, خروج 19 باپ اس کی 18 آیت, اور سوری احبار 19 باپ اس کی 18 آیت میں کیا لکھا ہے, میرے ساتھ نکالیں. تو انتقام نہ لینا اور نہ اپنی قوم کی نسل سے کینہ رکھنا, بلکہ اپنے ہمسائے سے اپنی مانند محبت رکھنا, میں خداوند ہوں. یہ بائبل مقدس کا درس ہے, نہ صرف محبت کو جاننا بلکہ اپنی مانند اپنے پڑوسی سے محبت رکھنا. اور اس کے لیے جو محبت کا لفظ بائبل مقدس میں استعمال ہوا ہے یہ ناؤن بھی ہے اور ورب بھی ہے, یعنی کہ اسم بھی ہے اور فعل بھی ہے, یعنی کہ محبت خدا کی محبت کو جاننا اور اس کے بعد خدا سے محبت کرنا اور پھر اپنے آپ سے اور پھر دوسرے لوگوں سے. اور یہاں پر کیا لکھا ہے کہ اپنی مانند محبت کرنا, میں خداوند ہوں. اسی طرح استثنا 6 اس کی 5 آیت میں بھی ہمیں کیا حوالہ ملتا ہے کہ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. نئے عہد نامہ میں بھی ہمیں جو لفظ ملتا ہے وہ ہے اگاپے, यानी के वर्ब और नाउन, मोहब्बत को जानने की जरूरत है और फिर मोहब्बत करने की जरूरत है जैसी मोहब्बत खुदा ने आपसे की है। और इसीलिए बाइबल मुकद्दस मत्ती 5 बाब उसकी तकरीबन 46वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि अगर तुम सिर्फ अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारा अजर क्या है, क्या फायदा है, कौन सी बड़ी बात है कि अगर सिर्फ तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो। सो बाइबल मुकद्दस मोहब्बत को इस तरह बयान करती है कि मोहब्बत की जाए, सबसे पहले जानने की जरूरत है, उसके बाद मोहब्बत अमली तौर पर उसे जामा पहनाने की जरूरत है। खुदा की मोहब्बत को हम जब देखते हैं उसके बेटे के साथ तो वो कैसी मोहब्बत है, अजीम मोहब्बत है। और इसके लिए यूहन्ना उसका 26वां बाप, यूहन्ना की इंजील उसका 26वां बाप, 17वां बाप उसकी 26वीं आयत को जब देखते हैं तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा है, मेरे साथ निकालें। और मैंने उन्हें तेरे नाम से वाकफ किया, किन्हें, शगिर्दों को। यहां पर यीशु मसीह अपनी सरदार काहिना के काहिन के तौर पर दुआ करता है अपने शिगिर्दों के लिए कि ऐ बाप उनको सच्चाई के वसीला से मुकद्दस कर क्योंकि तेरा कलाम सच्चाई है। और यीशु मसीह क्या कहता है 26वीं आयत में, और मैंने उन्हें तेरे नाम से वाकफ किया और करता रहूंगा ताकि वो मोहब्बत तुझको जो मुझसे है वो उनमें हो और मैं उनमें। खुदावंद खुदा चाहता है कि उस मोहब्बत के बायस वो हम में सुकूनत करे और हम उसमें। और ये मोहब्बत कहां से आई, खुदा की तरफ से। आज मौजूदा दौर में लोग सिर्फ मोहब्बत का चर्चा करते हैं लेकिन वो मोहब्बत से वाकिफ तो हैं लेकिन मोहब्बत की कोई बात नजर नहीं आती। बाइबल मुकद्दस चाहती है, सिखाती है कि हम सिर्फ मोहब्बत से वाकिफ ना हो बल्कि मोहब्बत को करें। नस्ल इंसानियत के साथ खुदा की मोहब्बत, ये मोहब्बत पेशतर से इससे पहले कि हम पैदा हो खुदा ने पूरी दुनिया से की है। खुदा ने सिर्फ मोहब्बत ये नहीं कि जैसे फिल्मों में और ऐसे इर्द गिर्द हम डायलॉग सुनते हैं गॉड इज लव, यानी कि खुदा सिर्फ नाउन यानी कि खुदा सिर्फ मोहब्बत है, नहीं। खुदा क्या करता है, अमली तौर पर भी मोहब्बत करता है। खुदा इसका सबूत देता है बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना 3:16 में, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने मोहब्बत रखी है, वो मोहब्बत ही नहीं बल्कि उसने मोहब्बत रखी है ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इसी तरह रूमियों 5 बाप उसकी 8वीं आयत में भी खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी को हम पर इस तरह जाहिर किया कि जब बनी नू इंसान गुनाहगार ही थे तो मसीह यसु खुदावंद गुनाहगारों के लिए मुआ। और खास तौर पर ईमानदार होते हुए हमें एक दूसरे से मोहब्बत रखने की जरूरत है, हमें एक दूसरे से मोहब्बत रखने की जरूरत है। और बाइबल मुकद्दस बड़े वाजिया तौर पर कहती है, यीशु मसीह हुक्म के तौर पर कहता है यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाप उसकी 21वीं आयत में, यीशु मसीह कहता है जिसके पास मेरे हुक्म है और वो उन पर अमल करता है वही मुझसे मोहब्बत रखता है और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। अगर हम अपने घर के कोने में बैठे हो खुदावंद मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, मैं तेरे लिए ये करूंगा वो करूंगा ये करूंगा, लेकिन ईमानदारों के साथ रफाकत नहीं, वो मोहब्बत अमली तौर पर जाहिर नहीं तो वो मोहब्बत झूठी है। हम अपने आप को धोखे में रख रहे हैं। बेशक हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं और दुनिया के लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं लेकिन खुदा को नहीं। बेशक हम अपने आप को फरेब देते हैं कि हम मोहब्बत करते हैं। अगर खुदावंद कहता है कि तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो। मोहब्बत कुर्बानी चाहती है, मोहब्बत चाहती है कि वो जाहिर हो कि किस बुनियाद पर की जा रही है। ना सिर्फ मोहब्बत को जानना है, मोहब्बत करनी है। और बाइबल मुकद्दस में बहुत से हवाला जात है जो हम मोहब्बत के लिहाज से देख सकते हैं कि खुदा ने ईमानदारों को अपने बेटियां और बेटे कहा है और ये हुक्म दिया है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखें, जिसमें यसुमसी ने यूहन्ना की इंजील उसका 13 बाप उसकी 34वीं आयत में कहा कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। क्यों खुदावंद यसुमसी बार बार मोहब्बत का कह रहा है? क्यों यसुमसी ने पतरस को कहा कि क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा हां तू तो जानता है मैं तुझे अजीज रखता हूं। यसुमसी ने कहा यस पतरस क्या तू मुझसे अगापे रखता है? पतरस ने कहा नहीं, मैं तुझसे फुलेटो यानी कि मैं तुझे अजीज रखता हूं, तुझसे मोहब्बत करता हूं, तेरे साथ मेरा गहरा शख्सी तल्लक है, मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है। हम ईमानदारों को ईमानदार होते हुए मोहब्बत इस बना पर नहीं करनी कि अगला पर्सन या कोई और उसका रवैया और आपके साथ वो कैसा है, इस बुनियाद पर नहीं ये दुनिया की मोहब्बत ठहरेगी, बल्कि हमको ईमानदार होते हुए एक दूसरे से मोहब्बत करने की जरूरत है, क्योंकि हमें जानने की जरूरत है कि हम मसीह में कौन हैं। और उसने हर एक ईमानदार को शाही काहिन ठहराया है। सो आज जो हम बात पास्टर की खिदमत पर सीख रहे हैं, पास्टर को जरूर है कि अपनी भेड़ों से ऐसी मोहब्बत रखे कि जैसी खुदावंद यीशु मसीह ने रखी है। ऐसी मोहब्बत रखने की जरूरत है जिसमें क्या है, निगाहबान होते हुए खिदमत को सरंजाम देने की जरूरत है, जिसका रूहुल कुद्दस ने हमें निगाहबान ठहराया है। ख्वा कोई भी पास्टर है, कोई सेमिनरी में स्टूडेंट है, उनको इन बुनियादी बातों को जानने की जरूरत है ताकि हमारी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम को जलाल मिले। और पालूस रसूल इमाल की किताब में कहता है कि जब हम 20वां बाप उसकी 27वीं-28वीं आयत को देखते हैं तो वो कहता है क्योंकि मैं खुदा की सारी मर्जी तुम में पूरे तौर पर बयान करने से ना झुका, बस अपनी और उस सारे गल्ला की खबरदारी करो जिसका रूहुल कुद्दस ने तुम्हें निगाहबान ठहराया है, ताकि खुदा की कलीसिया की गल्लाबानी करो जिसे उसने खास अपने खून से मोल लिया है। क्यों पालूस रसूल ये तकियत करता है, क्यों पालूस रसूल ये कहता है कि रूहुल कुद्दस ने जिस आपको निगाहबान ठहराया है, क्योंकि यीशु मसीह ने खास खून देकर ईमानदारों को खरीदा है। आज हमें अपनी जिंदगी में देखने की जरूरत है कि हमारी मोहब्बत कैसी है, खासकर जो हम निगाहबान पास्टर हैं या कोई और भी कहीं भी सुन रहा है। क्या हम जो नेहमतें खुदावंद खुदा की तरफ से हासिल है, उन नेहमतों की बुनियाद पर हम भेड़ों को लात और घूसे मारने वाले हैं या फिर उनकी रहनुमाई करने वाले हैं? क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है कि जो उस्ताद हैं वो ज्यादा मार खाएंगे, वो ज्यादा पूछ के उनसे ज्यादा पूछ काच की जाएगी। बाइबल मुकद्दस बड़े वाजिया तौर पर कहती है। सो पत्रस रसूल हमें बड़े ही वाजिया तौर पर सिखाता है। मेरे साथ एक हवाला देखें, पहला पत्रस उसका 4 बाप उसकी 7वीं आयत से क्या कहता है, पस सब चीजों का खात्मा होने वाला है, बस होशियार रहो और दुआ करने के लिए तैयार, सबसे बढ़कर ये कि आपस में बड़ी मोहब्बत रखो, क्योंकि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। हमें ईमानदार होते हुए इस बात को जानने की जरूरत है कि सब चीजों का खात्मा जल्द यानी कि यीशु मसीह आने वाला है। इसलिए होशियार यानी कि जागने की जरूरत है और दुआ करने की जरूरत, दवा के लिए तैयार होने की जरूरत है। सबसे बढ़कर जो बात है ये आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखो, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखो, क्योंकि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। नामियात में लिखा है पहला पत्रस 4:4, बगैर बुड़बड़ाए आपस में मुसाफर परवरदारी करो, मुसाफर परवरदारी करो। मुसाफराना जिंदगी गुजारनी है इस जमीन पर आपस में बुड़बुड़ाए बगैर। अगर कोई कहे कि कोई नया ईमानदार, कोई आज से 5 साल 3 साल में खिदमत में है, अगर वो कहे कि मुझे खुदा ने ये खिदमत दी है, मैं इस खिदमत को अपनी बुलाहट के मुताबिक करना चाहता हूं, जो अपने आप को रूहानी समझते हैं वो उसकी हौसला अफजाई करने के बजाय उस पर बुड़बुड़ाते हैं, हौसला अफजाई करने के बजाय उनके हौसलों को तोड़ते हैं। क्या ये दर्स बाइबल मुकद्दस हम खादमों को देती है? हरगिज नहीं। हमें जानने की जरूरत है, हमें खुदा बनने की जरूरत नहीं, बल्कि अगर कोई किसी खिदमत को करता है और वो खिदमत उस रूहुल कुद्दस की कुदरत और ताकत और खुदा के नाम को जलाल देने के लिए करता है, तो हमें जो के अपने आप को रूहानी समझते हैं उन तमाम नए ईमानदारों को, कमजोरों को हौसला अफजाई देने की जरूरत है, बजाय उन पर हंसने की, बजाय उनको मलामत करने की। क्योंकि ऐसी ही बात हमें इमार 5:5 में भी नजर आती है, जब वो पत्रस और बाकी रसूल यीशु मसीह के नाम से गवाही देना शुरू की, उन्होंने यीशु मसीह की खिदमत कर रहे हैं और मसीह के जिंदगी के उस काम से के जो उसने सलीब पर मुकम्मल किया है उसके बारे में प्रचार कर रहे हैं, तो उस वक्त के फकी फरीसी और सरदार काहिन उन पर क्या कहते हैं कि उस शख्स के नाम से यरूशलम में मत तालीम फैलाओ। लेकिन पत्रस और बाकी रसूलों का जवाब देखें, इमाल 5:5 उसकी 29वीं आयत को देखें क्या लिखा है। और पत्रस और रसूलों ने जवाब में कहा कि आदमियों के हुक्म की निस्बत खुदा का हुक्म मानना ज्यादा फर्ज है। हम बहुत दफा गलती पर होते हैं, बहुत दफा अपने इलम के बायस बहुत से लोगों के लिए ठोकर का बायस बन जाते हैं। हमें यहां पर गैमलियल जो के पालूस रसूल ने जिसके कदमों में बैठकर सारी शरीयत और बहुत सा इलम हासिल किया, यहां पर वो उस वक्त के तमाम सरदारों को और तमाम सरदार और काहिन और जितने भी लोग अदालत में खड़े हैं उनको कहता है, फकीहों फरीसियों को, शर्रा के मौलवों को कहता है कि ऐसा ना हो कि तुम खुदा के मुखालफ खड़े होकर इन लोगों को दुख पहुंचाओ और खुदा से नुकसान उठाओ। और वहां पर वो मिसालें देता है यहूदा गलीली की। उसने कहा कि उसने दावा किया और उठ खड़ा हुआ और उसने तखमीनन 400 आदमियों को अपने पीछे लगा लिया, लेकिन वो खिदमत सिर्फ उसके अपने जोर से थी और वो जाती रही। इसी तरह यहूदा गलीली के बारे में कहता है, हमें बहुत एहतियात करने की जरूरत है, जैसे उस वक्त का जो शरा का आलम, जो गैमलियल यानी के शरीयत का टीचर है, वो इस बात को मद्देनजर रखते हुए कहता है कि पास अब मैं तुमसे कहता हूं, 28वीं आयत में इमाल 5:5, कि इन आदमियों से किनारा करो और इनसे कुछ काम ना रखो, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा से भी लड़ने वाले ठहरें, क्योंकि ये तदबीर या काम अगर आदमियों की तरफ से हुआ तो आप ही बर्बाद हो जाएगा। हम जो अपने आप को रूहानी समझते हैं, ज्यादा इलम रखते हैं, जरूरत है हौसला अफजाई करने की और ये कहने के खुदा बाप अगर तूने किसी को खड़ा किया है तो वो इसलिए खड़ा हुआ है ताकि यीशु मसीह के नाम को जलाल दे। उसकी हौसला अफजाई करने की जरूरत है बजाय उस पर ताने खींचने की, बजाय के उसकी मखसूसियत नहीं, उसके पास ये नहीं, उसके पास फला नहीं। ऐसी बातों को छोड़कर हमें खुदा के खादमों की तरह हौसला अफजाई करने की जरूरत है। मेरे साथ चलें पहला पत्रस उसका 4:10 में क्या कहता है पत्र रसूल, जिनको जिस कदर नेहमतें मिली हैं, जिनको जिस कदर नेहमत मिली है वो उसे खुदा की मुख्तलफ नेहमतों के अच्छे मुख्तारों की तरह एक दूसरे की खिदमत में सरफ करें। अगर हम कुछ इलम रखते हैं तो एक दूसरे की हौसला अफजाई, एक दूसरे को बताने की जरूरत है कि आप कैसे मसीह में उसकी पहचान में बढ़ सकते हो। और क्या कहता है कि जिस कदर तुम में से हर एक को जो भी नेहमत खुदा की तरफ से मिली है उसे अच्छे मुख्तार जानकर एक दूसरे की खिदमत में सरफ करो। अगर कोई कुछ कहे तो ऐसा कहे कि गोया खुदा का कलाम है, और अगर कोई खिदमत करे तो उस ताकत के मुताबिक करे जो खुदा दे, ताकि सब बातों में यीशु मसीह के वसीला से खुदा का जलाल जाहिर हो। जलाल और सताइश अब्दुलबाद उसी की हो, आमीन। लेकिन ऐसा नमूना बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि सिर्फ मोहब्बत जानने की हद तक है, ना के करने की हद तक। चरवाहे को पासबानी खिदमत के जो इख्तियारात हैं, जो हुक्म है, जो औदा खुदावंद की तरफ से हासिल है, उसमें मोहब्बत बहुत ही जरूरी है। और पालूस रसूल से बड़े वाजिया तौर पर कहता है कि बाज को उसने मुबशर और बाज को चरवाहा और बाज को उसने उस्ताद बनाकर कलीसिया को दिया है। ये अजीम खिदमत है और इस खिदमत को सही तरीके से करने की जरूरत है। आज हमें अपनी अपनी जिंदगी में देखने की जरूरत है कि हम उससे किस तरह मोहब्बत रख रहे हैं। मैं बड़े फखर से खुदावन में कह सकता हूं कि मैं इस दुनिया में या इस मुल्क में अगर बैठा हूं तो अपने लिए नहीं, या फिर इस मुल्क की ऐशो इशरत में जिंदगी नहीं बसर कर रहा, बल्कि उस खुदावन खुदा का मंसूबा है जिसने मुझे कूड़े में से उठाकर इस जगह पर बिठाया है। और मैं हर वक्त अपनी हैसियत को, अपनी हालत को याद रखता हूं कि मैं कौन हूं और कहां से आया और किस मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा गया हूं। हर वक्त डरते हुए, कांपते हुए इस बात में कि खुदावन खुदा के नाम को जलाल मिले। अगर कुछ कहूं तो ऐसा कहूं कि गोवा खुदा का कलाम है, किसी की हौसला शिकनी नहीं बल्कि उनकी हौसला अफजाई की जाए, खा वो कोई भी हो। अगर बाइबल मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है कि क्या मैं तुमसे सच बोलने के बायस तुम्हारा दुश्मन बन गया, आज अपनी अपने दिल की हालत को, अपनी अपनी जिंदगी को जानने की जरूरत है। हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। अगर हम जीते हैं तो खुदावन के लिए, अगर बोलते हैं तो खुदावन के लिए, अगर मेहनत मजदूरी कर इस खिदमत को सरंजाम देते हैं तो उस जलाल के बादशाह के लिए। ये खिदमत रुपए, पैसे या किसी और ताकत के बायस नहीं, बल्कि उसने हम नाचीजों, अखीरों को, नकम्मों को, बेवाकूफों को चुन लिया है ताकि वो अपना जलाल जाहिर करे। कौन सी खूबी है मुझ में, 5वीं क्लास से भागा हुआ, कोई ऐसा हुनर, कोई ऐसी इलम, कोई ऐसी डिग्री नहीं, کیوں خدا مجھ بے وقوف کو استعمال کرے گا؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک اس کے نام کو جلال دینے کے لیے استعمال ہو، اور میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ میری زندگی سے اس جلال کے بادشاہ کو نام، بادشاہ کے نام کو جلال ملے۔ بہت وقت میں نے اپنے آپ کو خوش کرنے میں، دنیا کو خوش کرنے میں، دنیا کی خدمت میں گزارا ہے، اب میں نے وہ بھیت جانا ہے کہ میں اس زمین پر کیوں ہوں، اپنی خدمت، اپنی بلاہٹ کو پہچانا ہے۔ اسی لیے ہر روز میں اپنے خداون خدا کے حضور جھکتا ہوں تاکہ اس کے نام کی ستائش ہو، کیونکہ اس دنیا کو خوش ہم نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ایمانداروں کا یہ مقصد ہے زمین پر دنیا کو خوش کرنا، نہ ہی ہم چاہتے ہیں۔ بائبل مقدس کہتی کہ تم نے پیشتر بہت زیادہ وقت گنگے بوتوں کے پیچھے اور ان کی پرستش میں اور عبادت میں گزار لیا ہے، اب وقت ہے جاگنے کا اور سچائی سے واقف ہونے کا۔ خدا وہ ہے جو سب باتوں کا چناؤ کرتا ہے، خدا وہ ہے جو ہر ایک چیز کو چنتا ہے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ پالوس رسول اس بات کو کہتا ہے، افسیوں پہلا باب اس کی 3-4 آیت میں کہتا ہے، چنانچہ اس نے ہم کو، ہر ایک ایماندار کو، بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ اس نے ہمیں پاک اور بے عیب ٹھہرایا، پھر کس بنیاد پر ہم ایک دوسرے کو عیب دار اور ایک دوسرے پر الزامات اور ایک دوسرے کی عیب جوئی اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہم مسیح کی پیروی کر رہے ہیں یا اس جہاں کے خدا ابلیس کی پیروی کرتے ہوئے؟ کیونکہ ابلیس کا کام ہے دوسروں کو نیچا گرانا، ابلیس کا کام ہے جھوٹا ٹھہرانا، ابلیس کا کام ہے یہ۔ خدا قابلیت نہیں، خدا دستیابی کو دیکھتا ہے کہ کیسی محبت یہ بیٹا یا بیٹی مجھ سے رکھتی ہے۔ یہی بات پترس سے خداوند یسوع مسیح کر رہا ہے کہ کیا تو ان سب سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے کہا، یسوع مسیح نے اس سے کہا، کیا تو مجھ سے اگاپے رکھتا ہے؟ پترس نے کہا، نہیں، میں تجھ سے، تو تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھ سے فلیٹو، یعنی کہ تجھے عزیز رکھتا ہوں، تجھے شخصی طور پر محبت کرتا ہوں، اور کسی اور بنیاد پر نہیں بلکہ اس بنیاد پر کہ تیری محبت مجھ میں ہے۔ یہ محبت کا جواب ہے، اسی لیے میں قربان ہونے کے لیے، اسی لیے میں اپنی زندگی کو تیرے لیے صرف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آج ہمیں کلام خدا کے مقدس کے مطابق اگر کچھ بولیں تو گو ایسا بولیں کہ ایک دوسرے کی ترقی ہو، کچھ کہیں تو ایسا کہیں کہ لوگوں کو اطمینان اور تسلی ملے۔ بائبل مقدس کے حوالوں کو موڑ اور توڑ کر اپنے لیے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خدا کا مذبح ہے، لازم ہے، ضرور ہے کہ خدا کے مذبح سے صرف اس کی شفاف باتیں اس کے لوگوں تک پہنچیں تاکہ اس کا بدن ترقی پائے، تاکہ اس کے نام کی تعریف ہو۔ خدا نے کون سی خوبی نوح میں دیکھی تھی؟ خدا نے کون سی خوبی حنوک میں دیکھی تھی؟ خدا نے کون سی خوبی آدم اور ہوا میں دیکھی تھی؟ خدا نے کون سی خوبی موسیٰ میں دیکھی تھی؟ کون سی خوبی خدا نے دانیل میں؟ 100 کے حساب سے ہمیں ایماندار ملتے ہیں جو ہر طرح کی کسی نہ کسی کمزوری میں مبتلا ہے، اور خدا ان کا چناؤ کرتا ہے اور خدا انہیں استعمال کرتا ہے۔ ہمارا چناؤ آدمیوں کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہے، اور اس بات کو اپنے ذہن میں ڈالنے کی ضرورت ہے۔ بائبل مقدس کہتی ہے کہ ہم نے نہیں بلکہ اس نے ہمیں چن لیا اس سے کہ پیشتر آسمان اور زمین پیدا ہو۔ داؤد کہتا ہے کہ اس نے میری ماں کے پیٹ ہی میں جب میں अपनी मां के पेट में सूरत पकड़ रहा था उसने मुझे जाना और वो अयाम अपनी किताब में लिखे जो अभी तक वजूद में ना आए थे। क्या पालूस रसूल कहता है कि बनाए अलम से पेशतर उसने हमको चुन लिया, ना आसमान ना जमीन या किसी शय का वजूद आया, वो हमें जानता था, वो हमसे वाकिफ था, वो हमसे वाकिफ था और उसने हर एक का चुनाव किया कि जब उसकी मर्जी होगी तो वो उन्हें बुलाएगा। और इसको पालूस रसूल गलतियों उसका तकरीबन पहला बाप मेरे साथ निकालें बड़े वाजिया तौर पर इस सच्चाई को बयान करता है। गलतियों पहला बाप उसकी 15वीं आयत में लिखा है, लेकिन जिस खुदा ने मुझे मेरी मां के पेट ही से मखसूस कर लिया और अपने फजल से बुलाया जब उसकी ये मर्जी हुई। हर एक चीज का वक्त है और वक्त को गनीमत जानने की जरूरत है, अपनी अपनी बुलाहट को पहचानने की जरूरत है कि उन खुदा की दी हुई नेमतों के मुख्तार होते हुए खुदा की खिदमत को उस ताकत के बायस करें जो उससे हासिल है। आज ईमानदारों को जागने की जरूरत है। आज चुपान जो गलाबान जो के पास बानी खिदमत है, मुबशर की खिदमत है, इन सब को जागने की जरूरत है। क्यों आज हमारी कलीसिया में बीमारियों का नंगा नाच है, हर एक घर में नाफरमानी? क्यों नौजवान बेटियां और बेटे दर्द से करा रहे हैं हर रात? क्यों क्यों खामंद और बीवी का आपस में झगड़ा है, नाफरमानी, कलामे खुदा से दूरी? और इसके लिए खुदा पूछेगा निगाहबानों को कि जो कुछ मैंने तुमको दिया क्या तुमने दूसरों तक पहुंचाया? क्योंकि बाइबल मुकद्दस में सबसे उम्दा खिदमत चुपान यानी के गलाबान यानी के चरवाहा पासबानी खिदमत है। हमें अपनी अपनी हालत को जानने की जरूरत है। बाइबल मुकद्दस कहती है तब नसीहत करने में, मुलामत करने में और हौसला अफजाई करने में और कलाम की तालीम देने से बाज ना रह। हमें ईमानदार जिन जिन को ये नेमते हासिल हैं जानने की जरूरत है कि वो किस बुलावे से बुलाए गए हैं। और ये बुलावे खुदावन की तरफ से है, ये चुनाव आदमियों की तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से है। जिसने यर्मिया को चुन लिया, पेशतर से मूसा को उसने चुन लिया, दाऊद को चुन लिया, सुलेमान को चुन लिया, दानियल को चुन लिया कि वो आग और उसके बाकी उसके दोस्त आग में और वो शेरों की गार, हर एक चीज को खुदा ने इससे पहले के वजूद में आए उसने चुन लिया। और इसमें हम बहुत से ईमानदारों को देखते हैं, शुरू कर लें पदेश से लेकर मुकाशवा तक, वो ईमान के हीरो जो सूरमा हैं, उन सब को खुदा ने चुना है। और खुदा का चुनाव गलत नहीं होता। अगर कोई अपने आप से कुछ करेगा तो उसका काम जाहिर हो जाएगा, उसका काम जाहिर हो जाएगा। और अगर वो काम वो खिदमत उस चट्टान की बुनियाद पर नहीं तो फिर आंधी तूफान आएंगे तो सब हवा हो जाएगा। आज उन तमाम ईमानदारों को जो अपनी राहों को भूल चुके हैं वापस आने की जरूरत है। वो खुदावंद नहीं चाहता कि कोई भी उस रूहानी बरकात और नहमात से जो उसने दी हैं उनसे गाफिल रहें, सिर्फ अपने शख्सी हालत में उससे माफी मांगने की जरूरत है। और दोबारा जहां कहीं भी आपको खुदा ने मुकरर किया है, कोई भी आपकी नेहमत है उसे संवारने की जरूरत है। जो नेहमत ईमानदारों को हासिल है उससे गाफिल रहने की जरूरत नहीं है। بائبل مقدس کہتی ہے کہ ایک دوسرے کے لیے حوصلہ افزائی، ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کی شکستہ دلی میں، ٹوٹے ہوئے حوصلوں میں حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے۔ آئے ہم خداوند کے سر جھکے۔ آسمانی باپ، آج کے کلام کے وسیلہ سے بے شک کڑوا ہے، ہم سب کو حکمت اور دانائی دے تاکہ اپنی اپنی حالت کو جانے کہ کیا ہم صرف محبت کو جانتے ہیں یا کہ محبت کرتے ہیں جیسی تو نے محبت کی۔ اور تو ہم سے یہ تقاضا، ہر ایک ایماندار سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ کیا تم مجھ سے محبت رکھتے ہو؟ اور خدا باپ، جو کوئی تجھے جواب دیتا ہے کہ ہاں میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں، تو کہتا ہے اچھا، پھر جو نعمت برکت میں نے تمہیں دی ہے اسے استعمال کرو۔ آج سننے والوں کو بڑی برکت دے، دلوں کی آنکھوں کو روشن کر، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔